कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत दसम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकट्य के ऊपर वसुदेव जी की प्रार्थनाओं का अंतिम श्लोक, उसका रसाद आस्वादन करके फिर देवकी माता की प्रार्थनाओं का शुभारंभ आज करेंगे। और कल से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ कृष्ण और अन्य कृष्ण कथाएं 3-4 दिन चलेंगी, उसका रसास्वादन करेंगे। और फिर प्रभुपाद जी के आविर्भाव, व्यास पूजा और प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि नहीं, या ये तो अभी आएगा आविर्भाव, प्रभुपाद जी के व्यास पूजा और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा के उपरांत ही ये प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक अन्य कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए 22वें श्लोक का पाठ करते हैं। अयम त्वा सभ्यस्तव जन्म नव ग्रहे श्रुत्वा अगर्जांस्ते नयवधीत सुरेश्वरा सते अवतारं पुरुषहि समर्पितं श्रुत्वा अधुनैवाभिसरत्य उदायुधः। वसुदेव जी कहते हैं अयम त्व असभ्यस, ये जो कंस है ना, ये असभ्य है, बड़ा असुर है, दुष्ट है। तव जन्म न ग्रह, हमारे घर में आपके जन्म का जैसे उसको पता लगेगा क्या, इसको जैसे बताया था देवताओं ने आकाशवाणी से कि 8वां देवकी का गर्भ इसका काल है, तब से श्रुत्वा उसने जब ये वाणी सुनी थी तब अगर जात आपसे पहले होने वाले आपके 6 बड़े भाई ते अन्यवधित पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया, हे सुरेश्वर, हे देवताओं के ईश्वर सुरेश्वर। सुर कहते हैं सभ्य पुरुष को, ये असभ्य है, दुष्ट है, आप सुरेश हैं। सते अवतारम पुरुष ही समर्पितम, जब आपके अवतार का वो सुनेगा, अपने जो यहाँ पहरेदार हैं उनके माध्यम से श्रुत्वा अवधायिना, तो आपको मारने के लिए हाथ में आयुध तलवार खड़ग आदि लेकर दौड़ता हुआ यहाँ आ जाएगा। हे सुरेश्वर, हे भगवान, जब से आकाशवाणी ये जो भविष्यवाणी को सुना है कि आप हमारे घर में प्रकट होंगे, इस दुष्ट असभ्य असुर कंस ने आपके कसाई कंस ने, कंस शब्द से कसाई शब्द हिंदी में बना है, कंस शब्द से ही कसाई शब्द निकला है, तो इस कसाई ने आपके 6 बड़े भाइयों को पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया। और जब ये अपने संतरियों से आपके प्रकट्य का सुनेगा तो दौड़ता हुआ हथियार हाथ में लेके आपके मारने के लिए दौड़ता आएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ कंस को असभ्य कहा गया है, और असभ्य का अर्थ है दुष्ट, अति दुष्ट। और क्यों, पर अपनी बहन के संतान को कौन सभ्य मार सकता है, असभ्य ही था, तब अपने भांजों को अपने हाथ से पत्थर के ऊपर पटकने का घिनौना पाप किया है। 8वें गर्भ की आकाशवाणी सुनकर इसने बहुत दरंदे की तरह दरिद्रता के साथ बहुत बड़े दुख के साथ आपकी अपनी बहन के पुत्रों को पत्थर के ऊपर पटक के मारा। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपनी बहन को मारने के लिए विवाह के समय उद्यत हुआ, मंगल कार्य, और तभी मारने को तैयार हो गया। मैंने कैसे भी उसको बचा लिया तो उसके पुत्रों को पटक के मार लिया। और फिर प्रभुपाद जी सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं ऐसे असभ्य असुर दुष्ट कसाई क्या नहीं कर सकते। वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए बच्चों को, बाल को मार सकते हैं, गौ को मार सकते हैं, ब्राह्मण को मार सकते हैं, वृद्ध को मार सकते हैं, किसी के ऊपर दया नहीं करते, निर्दय होते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये प्रभुपाद जी के पांच वर्ग भागवत के पहले स्कंद में भी इन पांचों का विस्तार से कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के अंतर्गत वर्णन है कि वैदिक साहित्य में, सभ्यता में गाय, नारी, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण अवध्य हैं, इनकी सदा सुरक्षा करनी चाहिए। जिस समाज में गाय की रक्षा नहीं, नारी का सम्मान नहीं, बालकों की रक्षा का विवध और वृद्धों के लिए सुविधा नहीं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं, वो निश्चित रूप से दोषग्रस्त और दुष्ट सभ्यता नाश की ओर जा रही है। ये पांचों से कोई गलती भी हो जाए तो भी उसको क्षमा करनी चाहिए, परंतु असुर असभ्य इन सब नियमों का कोई परवाह नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी देखें आज आधुनिक, अब ये प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको 50 साल हो गए, कम से कम 40 साल पहले की बात है। प्रभुपाद जी का ये भाव है, लिख रहे हैं, ये 77 का ही है, कितना समय हो गया, 77, 78, 79, 2007, 2017, 25 साल हो रहे हैं, 24 साल, 25 आज 45 साल हो रहे हैं। ये दो बातें प्रभुपाद ने लिखी है, गौ हत्या और बाल हत्या, ये तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रतिबंध के सरेआम सर्वत्र हो रही है, भ्रूण हत्या और गौ हत्या। इसलिए मानव सभ्यता को सभ्यता कहना ही नहीं चाहिए, ये तो पशु से भी नीचे गिरी हुई है, ये तो असुर सभ्यता है। और देव ही ये सबसे बड़े पाप कर्म है, भ्रूण हत्या और गौ हत्या, और जिसके परिणाम के स्वरूप से प्रकृति ऐसी महामारी के रूप में सबको दंडित करती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, अब प्रभुपाद जी अपने जीवन का अनुभव लिखने जाएंगे, ऐसे असभ्य असुरी प्रवृत्ति के सरकार में सेवा करने वाले दुष्ट कृष्ण भावना आंदोलन के विरोधी हैं, उसके हित में नहीं है। और कुछ ऐसे पदाधिकारी सरकार के हरे कृष्ण महामंत्र के जपने को कहते हैं कि ये तो समाज के अंदर बहुत बड़ा भारी अपराध का कार्य हो रहा है और प्रभुपाद जी कहते हैं इसके खंडन में भगवत गीता लिखती है सततम कीर्तन यंतो माम यततंश्च दृढ़ वर्ता नमस्यन तच्चा माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासक। महात्माओं का तो धर्म है निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करना, यतन करना, दृढ़ व्रत का धारण करना, महामंत्र जपना ही चाहिए सर्वत्र। फिर भी लोग कहते हैं कि इस मंत्र जपने से हमारा आराम खराब होता है, हमारे जीवन में परेशानी पैदा होती है। परंतु समाज में ऐसे असभ्य व्यक्ति हैं तथा कथित महात्मा हैं जो गाय की और ब्राह्मण की और बालकों की हत्या कर रहे हैं और हरे कृष्णा आंदोलन को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये उस वक्त प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब बॉम्बे मंदिर जो अब बना हुआ है राधा रास बिहारी का जुहू में हरे कृष्णा लैंड, उसके ऊपर उस वहां के जो महानगर पालिका है बृंद नगर पालिका, उसके किसी पदाधिकारी ने ऐसे कहा था कि हरे कृष्ण मंत्र ये सवेल उठ के जपते हैं, इससे बहुत बड़ा जो है समाज दुखी है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे लोग हरे कृष्णा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कंस सुंदर कृष्ण सुंदर देवकी के सुत श्री कृष्ण को कैसे मार सकता है। नहीं मार सकता और नहीं मार सका, तो फिर ये असभ्य दुष्ट कृष्ण भावना की प्रगति को कैसे रोक सकते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नहीं रोक सकते। परंतु फिर भी हमें बहुत से संकटों से, कठिनाइयों से, रुकावटों से गुजरना पड़ रहा है। ये तो सत्य है कि कृष्ण को कौन मार सकता है, अनंत है, उसका कौन अंत कर सकता है। परंतु फिर भी वसुदेव कृष्ण के पिता कांप रहे थे कंस के भय से। ठीक इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हम भी कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन जो कृष्ण से अभिन्न है उसको कहीं ये असुर किसी दुनिया के कोने में रोक न लें, इससे भयभीत रहते हैं, जबकि इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं जैसे वसुदेव और देवकी के लिए कृष्ण पुत्र था और श्रील प्रभुपाद के लिए ये स्कान आंदोलन उनके लिए कृष्ण से अभिन्न है और स्वयं उनके संस्थापक आचार्य के नाते वही पितृ भाव से, पिता के भाव से विचार कर रहे हैं। कृष्ण भावना आंदोलन का संकल्प श्री कृष्ण ने झांसी में किया था, वृंदावन में चिंतन करते हुए इसका प्रकट्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ और प्रभुपाद ने ही इसका सारा सोच विचार और इसके संस्थापक है, तो बहुत बड़े चिंता में थे कि ये आगे कैसे चलेगा। अन्य श्लोकों में बहुत भाव प्रभुपाद ने लिखे हैं। आज अब प्रभुपाद के 125 साल हम मनाने जा रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के भावों को पुनः देखना चाहिए। चक्रवर्ती पाद इसमें लिखते हैं वसुदेव कहते हैं मैं आपकी महिमा को जानता हूँ, आप ये चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए हैं, आप साक्षात भगवान हैं, परंतु मेरी बुद्धि अज्ञानता के सागर को पार नहीं कर पा रही है, फिर भी मैं कंस के बारे में आपको सुना रहा हूं। कि कहीं ये आपको मार न दे, तो भगवान कहते हैं अरे पिता मेरे को क्या मारेगा, मेरी मधुर और सुंदर इस बाल रूप को देखकर मोहित हो जाएगा। बोल वसुदेव कहता है नहीं नहीं ये बड़ा असभ्य है, इसको कोई वात्सल्य भाव हृदय में है ही नहीं, पहले ही आपके 6 भाई मारे हैं, इसको पता लगते ही यहां आ जाएगा, अभी तो मैं उसको नहीं देख रहा हूं। भगवान अगर कहते हैं तो कहते भाई छुप जाओ छुप जाओ, आपको मारने के लिए आए तो आपको देखे ही नहीं, ऐसे करो, ये वसुदेव का भाव है। श्री जीवा गोस्वामी लिखते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं मैं जानता हूं कि आप असुरों के संहार के लिए आए हो, क्योंकि आप पहले वसुदेव ने कहा है कि आपका अवतार ही असुरों के संहार के लिए, हम आपके भक्त हैं, बहुत बड़ा संकट सह रहे हैं, आप पहले ही असुर के वध का विचार कर लो, क्योंकि ये दुष्ट और पाप न करे। आप सुरेश्वर हो और ये सुरेशों का देवताओं का शत्रु है। सुखदेव महाराज लिखते हैं श्री शुक उवाच अथैनम आत्मजम वीक्षै महापुरुष लक्षणम देवकी तम उपादावात कंसाद भीता स्विस्मिता सुविस्मिता। अथ ऐनम, सुखदेव महाराज कहते हैं वसुदेव की प्रार्थना पूरी हुई तो श्री कृष्ण ऐनम आत्मजम अपने पुत्र को वीक्षई देखकर और उस पुरुष में महापुरुष लक्षणम चतुर्भुज देखा, साक्षात भगवान के लक्षण देखे। देवकी तम उपाधावात उसकी प्रार्थना करने लगी, कंसात भीता कंस से भय भी थी और आश्चर्यचकित भी विशेष रूप से थी, कैसा ये बालक है, हमको डर लग रहा है इसको डर भी नहीं लग रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वसुदेव की प्रार्थना पूरी हुई और अद्भुत महापुरुष लक्षणों से युक्त भगवान विष्णु परम पुरुष के सारे लक्षणों से युक्त श्री कृष्ण को जब देवकी ने देखा, जो कंस से बड़ी देवकी जो कंस से बड़ी भयभीत थी, वो इस अति आश्चर्यचकित चतुर्भुज बालक को देखा और उसकी प्रार्थना करने लगी। श्रील प्रभुपाद जी लिखा है सुविस्मिता का अर्थ है अति अधिक विस्मय में पड़ गई, देवकी और उसके पति वसुदेव दोनों को यह विश्वास हो गया था कि हमारा पुत्र साक्षात परम पुरुष भगवान है और कंस इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, परंतु वात्सल्य स्नेह के कारण और कंस के दुष्ट व्यवहार को पहले आंखों से देखा हुआ था तो वो साथ साथ भयभीत भी थे, जानते भी थे भगवान है, कंस कुछ भी नहीं कर सकता इसका, फिर भी अति स्नेह के कारण हृदय में भय उत्पन्न हो रहा था कि कंस कहीं बालक को मार न दे, इसलिए विशेष विस्मित अति अधिक आश्चर्य था देवकी माता को। वैसे ही आश्चर्य था कि ये असुरों को मार के आगे बढ़ेगा या क्या होगा भविष्य में। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं पति को भयभीत देखा और अपने नवजात बालक को उसी चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि अभी तो ये बालक बोलेगा, दोनों को आश्वासन देगा, उनके पूर्व दो जन्मों की कथा बताएगा। तो देवकी ने सोचा मैं क्या करूं, ये तो अपने आप को भगवान कह रहा है, दिखा रहा है, इसको कंस का कोई भय नहीं है, इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के सामने कंस क्या है, कुछ भी नहीं है, तिनके के समान भी नहीं है, तो हमें भय क्यों लग रहा है, क्या मूर्खता है हमारी, ऐसे विचार करने लगी। शिवजीव गोस्वामी लिखते हैं, वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रार्थना के रूप में की, देवकी भी प्रार्थना करने लगी। देवकी ने कृष्ण के ऊपर दृष्टि डाली, जो कुछ समय से वसुदेव जिसको प्रार्थना कर रहे थे वो सूत की गृह में चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुआ था, उसको देखा, ये बालक उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ है, ऐसे सोचने लगी, और उसके कारण उसके हृदय में मात्र स्नेह उत्पन्न हो गया, अरे मेरा पुत्र है, ये मेरे उदर से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में उनके उदर में भगवान था, ऐसा नहीं है कि आए थे, ऐसा नहीं है, पहले से थे। जीव गोस्वामी लिखते हैं, देवकी योग निद्रा में भगवान के माया से कैसे बालक प्रकट हुआ इसका पता ही नहीं लगा। परंतु उसको अपना पुत्र कह रही है, और कंस के भय के कारण भयभीत है, और ये जानती है कि महापुरुष स्वयं भगवान है, और उसकी प्रार्थना करने लगी। पुत्र के नाते भय हो रहा है और भगवान के नाते निर्भय भी है। श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, कि आठवां संतान था जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कंस सुन चुका था, और इसी बालक के प्रतीक्षा करते हुए ये कंस के कारागृह में दोनों दंपति वसुदेव और देवकी सब संकट सह रहे थे श्री कृष्ण के प्रकटे के लिए, और वो समय आ गया है, वो हमारे उदर से उत्पन्न हुआ है, नहीं नहीं वो तो पहले से ही सब जगह होता है। भगवान ने तो दिव्य प्रकट्य का एक नमूना किया है, भगवान का जन्म तो दिव्य है, पहले भी वसुदेव ने देखा, देवकी ने क्यों नहीं देखा, भगवान की ये भी एक दिव्य शक्ति है। देवकी उस समय योग निद्रा में थी, पहले तो उनको भय लगा, फिर भगवान की शक्ति देखे निर्भय भी हो गई। उसने महापुरुष साक्षात नारायण के रूप में भगवान को देखा, चतुर्भुज रूप में देखा, आश्चर्यचकित हो गई, कंस के भय को भूल गई और भगवान को प्रार्थना करने लगी। देवकी क्या कह रही है, एक आज देवकी के श्लोक का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री देवकी उवाच, रूपम यत्तत् प्राहुराव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सतामात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। आप स्वयं प्रकाश अध्यात्मिक दीप हो। रूपम यत् तत् प्राहुर अव्यक्तम आद्यम, भगवान का जो ये आपका रूप है ना, ये कहा जाता है वेदों में अव्यक्त है, ये भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, ये आदि है, इसका मतलब इसका कभी जन्म नहीं होता है, ये ब्रह्म ज्योति है, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, ये तीनों प्रकृति से गुणों से परे है, ये निर्विकार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये केवल सत्ता मात्र है, ये वास्तव है, इसमें कोई भौतिक विशेषता नहीं है, निर्हितम, ये कुछ करता भी नहीं है, इसको कुछ करना भी नहीं है, ये सर्वत्र है। निर्हित सता मात्रम, निर्हितम, कोई इसके इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के है। और ये साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप है। देवकी कहने लगी, वेदों में ये वर्णन है प्राहु कहा गया है। क्या कहा गया है? कि आप अव्यक्त है, वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता, मन से आपका चिंतन नहीं किया जा सकता, उससे परे हो, भौतिक मन और इंद्रियों और बुद्धि से परे हो, आप सारे भौतिक जगत की सृष्टि के कारण हो, पर इससे परे हो, आप परम ब्रह्म हो, महान हो, ज्योतिर्मय हो, सूर्य के समान, आपका कोई भौतिक कारण नहीं है, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप सदा एक रस रहते हैं, आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए वेद कहते हैं आप ही सत्ता मात्र हो, इसलिए आप वेदों के वाक्यों का वास्तविक अर्थ हो, और आपको जो जान लेगा वो आस्ते आस्ते सब चीज समझ जाएगा। आप ब्रह्म ज्योति और परमात्मा दोनों से विलक्षण हो, उनके आधार हो, और उनसे अलग भी नहीं हो, और उनसे अलग भी हो, सब कुछ आपसे निकलता है, आप सारे कारणों के कारण आदि कारण है। हे विष्णु, अध्यात्मिक दीप दिव्य ज्ञान का प्रकाश आपसे प्रकट होता है। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस बात के ऊपर है कि भगवान विष्णु ही सब कुछ जो हमको दिख रहा है उसके आदि कारण है, और विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों विष्णु तत्व है। ऋग्वेद में लिखा है ओम तद विष्णु परमम पदम पश्यन्ति यम सूर्यः यस, तो विष्णु परम पद है, वो ही वास्तविक वस्तु है, वो सर्वव्यापक है। विष्णु का मतलब वसति सर्वत्र, सर्वव्यापक है, वो परमात्मा है, वही ब्रह्म है। जीव भी भगवान का अंश है, जीव भी भगवान का अंश है, जो वो भगवान वो जिसको और भी कई शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधै श्रुते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, इसलिए कृष्ण हो या विष्णु हो वो सब कुछ है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव सर्वम मत सर्वम प्रवर्तते, मैं मुझसे सब प्रकट होते हैं, मैं सबको प्रेरणा देता हूं, सब कार्य मेरे कारण होता है, इसलिए भगवान सर्व कारण कारण है। और भगवान विष्णु जब सर्वव्यापक रूप से अपना विस्तार करते हैं तो समझना चाहिए वो निर्विकार है, निर्विशेष है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक विशेषताएं नहीं है, और वो ब्रह्म ज्योति ये सब उसी का आधार है। ये सब कुछ कृष्ण से निकलता है, फिर भी कृष्ण एक व्यक्ति है। अहम आदिर ही देवा नाम, ये देवता मुझसे निकलते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबका भी उद्गम स्थान है, सारे देवता वहां से निकलते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म मेरे ऊपर टिका हुआ है। अब प्रभुपाद जी का थोड़ा तात्पर्य है कि लोग देवताओं को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो अविधि पूर्वक पूजा है। यद्यपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विते पिमामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम, भले देवता की पूजा करते हैं, पूजा होती मेरी है क्योंकि देवता मेरे आश्रित है, परंतु उनकी पूजा अविधि पूर्वक है, उसमें विधि नहीं है। और ये सारे जीव जैसे मेरे अंश हैं, देवता भी मेरे अंश हैं, देवता और जीव में इतना अंतर है कि देवता कुछ तपस्या करके भगवान से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करके और इस संसार के संचालन के विभागों के अधिपति बन जाते हैं, तो हैं वो भी जीव संज्ञा में, परंतु जिसको अल्प ज्ञान है और जो भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित है वो देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए भगवद गीता ने देवताओं की पूजा करने वालों की निंदा की है। कामेश ज्ञान प्रपद्यंते, अन्य कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो गया है देवताओं से तुच्छ संसारी सुख के लिए पूजा पाठ करके अपना समय व्यर्थ गंवा के भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं, ये उनकी कम बुद्धि का परिचय है। और ऐसे कई दर्शन है जिसमें मायावाद दर्शन जो है जो भगवान को भौतिक शरीर वाला मानता है, ये सब वास्तव में भगवान को समझ नहीं सकते। कृष्ण या विष्णु जो आदि पुरुष है, सबका आधार है, उसके लिए वेदों में लिखे यस्य भाषा सर्वमिदं भाति, जिसके प्रकाश से सभी प्रकाशित है। और भागवत में भी लिखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिम सनातनम, ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भी सनातन है, ये कृष्ण के ऊपर आश्रित है। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है अंडांतर स्थ परमाणु चांतर स्तम, कण कण में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। यस्य प्रभा प्रभतो जगदंत कोटि कोटिषु अशेष विशुद्धाति भिन्न विभूति भिन्नम, जो जो ब्रह्म है जिसके ऊपर ये संसार टिका हुआ है वो भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान के ऊपर आश्रित है। तो जो भी जिसका वर्णन कर रहे हैं अंततो गत्वा वो कृष्ण का ही वर्णन है, क्योंकि वही वास्तविक सत्य है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, और देवकी जो है भगवान की अनन्य भक्त है, वो जानती है कि भगवान विष्णु अब मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव ने जब प्रार्थना पूरी कर ली तो देवकी भी अपनी प्रार्थना करने लगी, वो बहुत भयभीत थी, माता थी, किससे भयभीत थी, अपने भाई कंस के दुष्ट व्यवहार से, अत्याचार से। कहने लगी हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, आपका जो ये सच्चिदानंद रूप है, नित्य शाश्वत स्वरूप है, ये नारायण जैसा है, आपके जो रूप नारायण का हो या राम का हो या शेष का हो या वाराह हो, नरसिंह हो, वामन हो, बलदेव हो, ऐसे आपके असंख्य कोटि कोटि अवतार हैं और ये सब विष्णु तत्व हैं, इसका वेदों में वर्णन है और ये आदि है। इसलिए आप आदि पुरुष हो, भौतिक जगत से बाहर हो, आप जगत के सृष्टि से पहले थे, आपका ये रूप नित्य शाश्वत सनातन है, स्वयं प्रकाशित है, निर्विकार है, निर्गुण है, ये अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, आनंदमय है, विशुद्ध सत्व का रूप है और निरंतर नाना प्रकार की लीलाएं करता रहता है, किसी एक रूप में आप सीमित नहीं हो सकते, आपके सारे दिव्य रूप अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। मैं जानती हूं, समझ गई हूं कि आप साक्षात विष्णु हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें फिर निर्णय करना चाहिए कि सब कुछ भगवान श्री विष्णु के ऊपर आश्रित है और विष्णु से अलग भी है, और इसी सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि भगवान भक्तों के वश में आ जाते हैं, कब, जब भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करके इस बालक को अपने वश में कर लूंगी, तब मेरी इच्छा उसके सामने प्रकट करूंगी। क्या इच्छा प्रकट करेगी? देवकी के छोटे बालक बन जाओ। चार श्लोकों में ये वर्णन करेगी, पांचवा ये है। हमको बड़ा भय है, एक क्षण क्षण में हम बड़े भयभीत हैं हे नाथ, और आपको कोई भय नहीं है। चार श्लोकों में ऐसा वर्णन करेगी देवकी। वेदों ने यह वर्णन किया है कि आप अव्यक्त हो, भौतिक इंद्रियों से परे हो, आदि पुरुष हो, अजन्मा हो, और आपका जो स्वयं प्रकाश ये स्वरूप है, ब्रह्म है, और ये निर्विकार है। और इसका वर्णन श्रुति में भी आता है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यस्य भाषा सर्वमिदं भाति सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सब हम प्रभुपाद जी के श्लोकों में पढ़ के आए हैं। सो आज इस प्रार्थना को यहाँ विराम देते हैं। बहुत लंबा जीव गोस्वामी जी का तात्पर्य है, इसका रसास्वादन हम फिर करेंगे। अब हम कथा को इसलिए विराम भी दे रहे हैं कि 7:30 बजे दूसरी एक कथा आज शुरू करनी है दक्षिण भारत के भक्तों के लिए। तो यहाँ अपनी कथा को आज विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल।
हरे कृष्णा,
दंडवत प्रणाम। आगे फिर देखेंगे
जी। प्रोजी कल से आप बोल रहे थे कि
कल 7:15 बजे आपके इसी लिंक पे 7:15 बजे करीब जो भी लीला शुरू करेंगे, तो सोचें आज कौन सी करते हैं। तो इसी लिंक पे एक और